البشري، سورة البقرة آیت نمبر 17. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، ایک ایسے شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. فتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا. ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ کتنے لوگوں کے بارے میں پڑھا، سب سے پہلے مومنین کے بارے میں پڑھا، پھر کافروں کے بارے میں پڑھا، ہے نا، پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے منافقوں کے بارے میں پڑھا اور مشرکین کے بارے میں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو ہے یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے، یعنی انکار کرنے والے جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی، یا تو وہ سرے سے انکار کر رہے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں کہ دل سے انکاری ہیں اور زبان سے اقراری ہیں. جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دل ان کا اقرار کرتا ہے لیکن زبان ان کی جو ہے وہ انکار کرتی ہے. اور منافق کیا کرتے ہیں، زبان اقرار کرتی ہے اور دل ان کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے. آپ نوٹ بھی کر لیں کہ کفر کی کچھ اقسام بھی ہیں. بڑی اچھی سی یہ مثال ہے، اس سے آپ کو اور بات جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ جب کوئی بھی کفر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ دل سے بھی کفر کرتا ہے اور زبان سے بھی، ہارٹ سے بھی اور پھر ٹنگ سے بھی، یعنی دل اور زبان دونوں سے انکار کرنا، اس کو کہتے ہیں کفر الانکار یا کفر الانکار. یعنی انسان اپنے دل اور اپنی زبان سے حق کو نہ مانے، حق کے قریب نہ پھٹکے. اس کی مثال ہے فرعون کی، نہ اس کی زبان نے اقرار کیا نہ اس کے دل نے اقرار کیا، دونوں نے انکار ہی کیا. دوسری جو قسم ہے یہ ہے کفر العناد، کفر العناد. تو اس سے مراد کیا ہے کہ دل سے اقرار زبان سے انکار، دل مان رہا ہے پر زبان نفی کرتی جا رہی ہے. جو چیز بھی رسول لے کر آئے اسے دل تو مانے لیکن زبان جو ہے وہ انکار کا اعلان کرتی رہے. جیسے ابو جہل، ابو جہل دل اس کا اقرار کرتا تھا، چھپ چھپ کر قرآن کو سنتا تھا، کبھی خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر، کبھی آگے پیچھے ہو کر، اور مانتا تھا کہ سچی بات ہے لیکن وہ انکار کرتا تھا. تو یہ ہے کفر العناد. تیسری قسم ہے کفر الانفاق، منافق سے ہے یہ، اس میں دل کا انکار ہے زبان کا اقرار ہے. عبداللہ بن اوبئی اس کی مثال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عبداللہ بن اوبئی کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا تھا، کہتا تھا آپ کے ساتھ ہیں، جب غزوہ احد کا موقع آیا تو ہٹ آیا کہ ہمیں ہمارے گھر والے ہمارے بیوی بچے خطرے میں ہیں، اور بھی بہت سے موقعوں پر. تو یہ ہے منافقت کا. پھر چوتھا ہے کفر ملت، یعنی اس کے کسی بھی ایکشن سے، اس کے کسی بھی ڈیڈ سے، اس کی کسی بھی ٹاک سے، یعنی اس کے فیل یا کال، کسی بھی چیز سے کوئی وہ ایسا کام کرے جو انسان کو ملت اسلام یعنی اسلام کی جو ایک جماعت ہے اس سے اس کو جو ہے وہ نکال دے، خارج کر دے، کفر ملت. جیسے کوئی کہتا ہے میں زکوۃ نہیں دیتا، تو جس نے زکوۃ نہیں دی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کفر ملت ہو گیا نا، اسلام کی جماعت سے وہ خارج ہو گیا. پانچواں کفر جو ہے کفر عمل ہے، عمل سے کفر کرنا، یعنی انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، مانتا ہے، ایمان لاتا ہے لیکن اس کے اعمال میں، اس کی باتوں میں کیا ہے، انکار ہے. جیسے بہت سے مسلمان جو ہے وہ इनकार करते हैं, क्योंकि कुरान मजीद सूरत फातिहा से लेकर अन्नास तक पूरा का पूरा इस पर अमल करना है। लेकिन क्या करते हैं मुसलमान कि जो जो चीजें आसान लगती हैं हम वो ले लेते हैं, जो हमें मुश्किल लगता है हम कहते हैं ये नहीं हम कर सकते, है ना। बहुत सी चीजें हम ऐसे, तो ये अमल का कुफर है। तो अब यहां पर भी क्या है कि अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 में यहां पर एक मिसाल दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह के एक बंदे ने जब इस्लाम की रोशनी फैलाई, जब कुरान की रोशनी फैलाई, जब हक जो था उसको बातिल से अलग करके दिखाया, तो जो लोग क्या थे, जिनके पास आंखें थी, जिनके दिल ईमान से रोशन थे, वो तो बात को समझ गए, और जिनके अंदर इनकार था, जैसे बाज लोग कहते हैं यहाँ पर इस आयत से मुराद जो है ना वो काफिर है, बाज लोग कहते हैं कि मुनाफिक हैं, क्योंकि मुनाफिक जो हैं काफिर और मुनाफिक दोनों ही हैं। तो असल में ये मिसाल जो है ये इनकारी लोगों की है, वो काफिर भी हो सकते हैं, वो मुनाफिक भी हो सकते हैं, है ना। दोनों ही इनकार करते हैं ना। हमने ये भी देख लिया कि इनकार की किस्में मुख्तलिफ है। तो मिसाल उस शख्स की जिसने आग जलाई, बाज लोग कहते हैं कि इससे मुराद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाज कहते हैं इससे मुराद आप ये भी कह सकते हैं जैसे मूसा अलैहि सलाम ने आग जलाई तौरात की। तो नेकी की रोशनी, इस्लाम की एक इन्वायरमेंट माहौल बनाया, तो क्या हुआ कि सारे माहौल को उसने रोशन कर दिया। तो जब हर तरफ रोशनी फैल गई, लोगों को समझ आ गई कि ये चीज, ये हकीकत है, यही सच है, लेकिन जो काफिर थे या जो मुनाफिक थे उनको रोशनी में भी कुछ नजर ना आया। फिल्म मादात माहौलाहू, इर्द गिर्द का माहौल तो रोशन हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ देखना ही नहीं चाहा, आंखें बंद कर ली, दिल के दरवाजे हदायत के लिए बंद कर लिए, कानों को भी बंद कर लिया, कहा कि हम नहीं मानते किसी भी चीज को, ना इनकार किया, जैसे अबू जहल था, जैसे इबलीस था, इबलीस ने भी इनकार किया, और मक्का में बहुत से ऐसे सरदार थे मक्का के जो काफिर थे वो इनकार करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर ज़हब अल्लाहु बिनूरहिम, फिर अल्लाह ने भी उनका नूर जो है वो उनसे वता रखा हम, और उनको छोड़ दिया फी जुलुमात, अंधेरों में। किस चीज का अंधेरा? कुफर का अंधेरा, डार्क डार्कनेस ऑफ कुफर, डार्कनेस ऑफ शिर्क, डार्कनेस ऑफ कंट्राडिक्शन, इंसान बाज लोगों की लाइफ में जो है वो मुनाफ़त होती है, डबल फेस। तो अल्लाह ताला ने उनको उसके अंधेरे में छोड़ दिया। तो हर शख्स अपने अमल के मुताबिक अपने अंधेरे में है, उसी में भूल भुलैया हैं, और वो उनके अंदर भटक रहा है। ला युब सिरून, उनको नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनको आंखें नहीं दी थी, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उनको जो है वो बसारत नहीं दी थी, यानी उनके पास बसारत भी थी बसीरत भी थी। जब वो अल्लाह के नबी को की दावत को कबूल करने के मुनकर हो गए, जब उन्होंने उसको कबूल ही नहीं करना चाहा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर जब उन्होंने खुद अपने लिए हदायत की बजाय गुमराही को पसंद कर लिया, वो सदाकत का, वो सच का चेहरा देखना ही नहीं चाहते, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी हदायत कोई अंधी बाण तो नहीं है, मेरी हदायत कोई इतनी सस्ती तो नहीं है, इतनी हकीर तो नहीं है कि जो ना भी लेना चाहे तो मैं उसको दे दूं, मैं उसको ऐसे ही बांट दूं। जहां तक रही बात दुनिया की, दुनिया की दौलत की, दुनिया की नेमतों की, ये अल्लाह ताला बारिश का बादल जैसे बरसता है ना, अल्लाह सबको देता है, काफिर को भी देता है, मुनाफिक को भी देता है, मुशरिक को भी देता है। आप देखें इस वक्त मगरिब को देखें कितनी ज्यादा इनके पास दौलत है ना। अल्लाह ताला कहते हैं अगर मुझे इस बात का डर ना होता ना कि लोग इस्लाम का इनकार ही कर बैठेंगे, कि इनकार ही ना कर देते, तो मैं वरना ये काफरों के घरों के दरवाजे, इनकी सीढ़ियां, इनकी छतें मैं सोने की बना देता। सूरत जुखरुफ, सोने चांदी, यानी ये जो दुनिया का माल और दुनिया की दौलत है, ये इसलिए नहीं है कि कोई शख्स बहुत अच्छा है, कोई शख्स बहुत नेक है, ये तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं काफरों को भी देता हूं। बारिश बरसती है, काफिर पे भी आती है, मोमिन पे भी आती है, आबादी पे भी आती है, वीराने पर भी आती है, हर जगह बरसती है। यही रही बात हदायत की, रही बात इस्लाम की, रही बात हक की, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो आंखें खोलना चाहे, जो इस रोशनी को समेटना चाहे, जो इस हदायत को लेना चाहे, ये मैं सिर्फ उन्हीं को देता हूं, और जो लेना नहीं चाहता फिर उसके लिए हदायत के दरवाजे बंद कर देता हूँ, उनके दिलों पर मोहर लगा देता हूँ। आपने ये अभी पहले भी हमने पढ़ा था ना कि मोहर कैसे लगती है, कि जो इंसान एक अमल करता है दिल पर एक निशान लग जाता है, गुनाह का जब अमल करता है, जब दूसरी गलती करता है फिर दूसरा एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, फिर वो अमल करता चला जाता है यहां तक कि उसका दिल पूरी तरह स्याह हो जाता है। अब वो अच्छा काम करे उसको खुशी नहीं होती, वो बुरा काम करे उसको कोई अफसोस नहीं होता। इसी को कहते हैं राना अला कुलूबहिम। इसका ये मतलब नहीं जो लोग ये समझते हैं कि चूंकि अल्लाह ने हदायत नहीं दी इसलिए हम मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं फिर उनका नूर ले गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनका नूर ले गया, हदायत का नूर उनका नूर ले गया, अब उनके दिल टेढ़े हो गए हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है, हदायत मिलती ही नहीं है। तो यहां पर यह है कि चूंकि वो रोशनी में रहना नहीं चाहते, अल्लाह ने भी उनको जो है वो अंधेरे में डाल दिया, क्योंकि वो भी शिर्क और कुफ्र और निफाक के अंधेरों में जो है वो अपनी जिंदगी जो है उसको जिंदगी को बसर करना चाहते हैं। जैसे मुनाफिक क्या करता है, नफ्स परस्ती करता है, काफिर क्या करता है, सिरे से ही इनकार कर देता है। तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है, और इस पर मुझे और आपको हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा भी शुमार जो है वो ऐसे लोगों में कहीं ना हो जाए कि जब अल्लाह ताला के हदायत की रोशनी, कुरान की रोशनी, दीन इस्लाम की रोशनी चारसू है, बहुत से लोगों के पास है। 2-3 दिन पहले मेरी एक औरत से बात हुई, मैंने कहा आप जॉब नहीं कर रही, कहने लगी कि नहीं मेरा शोहर जब यहाँ आए थे उन्होंने पहले दिन ये कह दिया था कि देखो तुमने सब्र करना है और कनात करनी है, थोड़ी भी कनात कर लेना, तुमने घर और बच्चों को देखना है, मैं जॉब करूंगा। अगर तुम घर से निकली तो नतीजा क्या निकलेगा कि बच्चे जो हैं उनकी हम अच्छी तरबियत नहीं कर सकेंगे। और यहाँ का आप देखें तो फैमिली सिस्टम नहीं है, और अब देखा देखी मुसलमानों का फैमिली सिस्टम भी जो है वो मुतासिर होता जा रहा है, उसको भी नुकसान होता चला जा रहा है। तो आप देखें कि जो थोड़ी बार भी कनात करता है अल्लाह ताला उसको क्या करते हैं, उसको सब्र दे देते हैं, उसको शुक्र दे देते हैं, थोड़ी उसके मियाँ की कमाई के अंदर बरकत दे देते हैं। और जब हम सोचते हैं कि सारे घर के लोग जो हैं सारे भी जॉब करें तो बाजू का तब भी बरकत नहीं होती, जब तक कि अल्लाह ना दे, है ना। तो बहरहाल जहां मजबूरी है इस्लाम मना नहीं करता, मजबूरी के तहत किया जा सकता है हॉबी के तौर पर अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, और बहुत ज्यादा यानी दौलत के में दौलत की जो चमक है या उसकी जो चुंधियाहट है उसके पीछे अगर हम भागते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर एक के फराइज मुकर्रर कर दिए हैं। तो दीन इस्लाम एक रोशनी है जो हम सबको जो हम जिंदगी के मसाइल को हल कर देता है। अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं, आगे फरमाया कि सुम्मुम बुकमुन उमियुन। तो सुम्मुम के मानी क्या है, ये बहरे हैं, वैसे बहरे नहीं, ये कान इनके पास हैं, सारी बातें सुनते हैं, हक बात के लिए इनके कान बहरे हैं। अजान होती है ऐसे लगता है उन्होंने अजान को सुना ही नहीं, है ना। इस्लाम का कलमा बुलंद होता है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। जैसे अब आप देखें कि हाँ दुनिया क्या करती है, मूवीज देखने के लिए पैसे अपने पास से देती है, पैसे देकर गुनाह खरीदते हैं, पैसे देकर गुनाह खरीदते हैं। हदायत मुफ्त में मिल रही हो ना, हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, कहाँ इतना टाइम है, और हम समझते हैं ये तो मौलवियों का काम है, हम कहते हैं ये तो बूढ़ों का काम है जिनको दुनिया ने धुतकार दिया। अब जब सारे काम से हम फारिग हो जाएंगे ना, बच्चों से, जवानी से, सारे काम, फिर हम भी अल्लाह अल्लाह करेंगे, मसल्ला ले लेंगे और जाय नमाज ले लेंगे और लोटा ले लेंगे और तस्बीह के दाने गिराया करेंगे, है ना। तो सुनना ही नहीं चाहते। अल्लाह ताला कहते हैं ये लोग बहरे हैं, बुक मुन, ये लोग गूंगे हैं, गूंगे हैं, सारी बातें करते हैं, इनको दौलत की, तिजारत की, बिजनेस की, मरीज की, साइंसदान की, और सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, हर तरफ तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, संतो हरफत, सब बातें आती हैं, नहीं आती तो कुरान की नहीं आती, हदायत की नहीं आती। छोटी छोटी उम्र में आप देखें, छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, उसका भी एक कंप्यूटर है, उसका भी एक लैपटॉप है, आंख खोलता है, ब्रश करता है कि नहीं करता, बिस्मिल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, नाश्ता करता है कि नहीं, आके कंप्यूटर पे बैठ जाता है बच्चा, है ना। तो असल बात क्या है कि यानी ये लोग जो हैं नहीं बोलते तो हक बात नहीं बोलते, बाकी सारी बातें बोलते हैं। उमियुन, ये लोग अंधे हैं। हमने ये आयत 15 के एंड में या महून पढ़ा था, या महून का रूट है आयन मीम हा, नजर आ रही है मोटी सी, आ रही है ना आयन मीम हा। ये उस अंधे को कहते हैं जो दिल का अंधा हो, जिसके पास बसीरत ना हो। यहां पे है आयन मीम या कौन सा अंधा है, जो आंखों का अंधा है, यानी आंखें तो हैं पर इसमें रोशनी नहीं है, बसारत नहीं है। अब कहा फहुम ला यरजिउन, अब इन्हें जो है अब ये नहीं पलटेंगे, अब ये रुजू नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी कानों को, अपनी जबान को और अपनी आंखों को जब हक बात के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते, इन्होंने दूसरे रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं सुमुम बुकमुन अमयुन फहुम ला यरजिउन, अब ये लौटेंगे नहीं, दूर जाते जा रहे हैं। तो आप कैसे याद करेंगी सुमुम बुकमुन अमयुन, मिलते जुलते से लफ्ज लगते हैं ना, तो इसको आप कैसे याद करेंगी। मैं इसको जब एक दफा याद करना चाह रही थी तो मुझे ये बात बड़ी अहम लगी कि सुम, हम कहते हैं ना गुमसुम हो जाना, गुमसुम हो जाते हैं, जब गुमसुम हो जाते हैं सुनी अनसुनी कर देते हैं, वो तो गुमसुम बैठा था, कुछ सुन ही नहीं रहा था ना, तो सुम उससे याद कर लें कि मतलब क्या है बहरा। अच्छा बुकमुन हम कहते हैं बकवास ना करो, मत बोलो कि मैंने ऐसे याद, मैं जब किसी को चीज को याद सोचती हूँ ना इसको याद करना है, तो उसको कहीं से उसके मानी बना सोचती हूँ कि कैसे इसके साथ लिंक कायम होता है। बुकमुन बकवास नहीं करो, बोलो नहीं, तो बुकमुन गुंगा। आगे है अमियुन, तो अमियुन फिर एक ही लफ्ज रह गया, इसके मानी क्या है अंधा, ठीक है। और आप वो भी याद कर सकती हैं जा, वो सूरत अबासा में है ना, अबासा व तवल्ला अंजाहुल आमा, तो उनके पास एक अंधा आ गया प्यारे रसूल सल्लम के पास। या आप सूरत आपका 30वां पारा माशाल्लाह शुरू हो रहा है, तजवीद में आपको आता चला जाएगा। तो बहरहाल सुम बुकमुन उम्यून में खबरदार के इसके मानी में आपने गलती की। अगली आयत है आयत नंबर 19, ये भी एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, और बाज लोग ये कहते हैं कि ये मिसाल जो है ये मुनाफिकत की मिसाल है, मुनाफिक लोगों की। और ये कौन लोग हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ओ या कसे ये बिम मिनस समाई, के आसमान से जोर की बारिश हो रही है, सैयद जोर की बारिश हो रही है आसमान से। और जब जोर की बारिश है तो बारिश के साथ साथ क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसके साथ अंधेरी घटा भी है, जुलुमात हैं, वरादुन और कड़क भी है, वह बरकुन और चमक भी है। अब ये यानी जोर से बारिश हो रही है जिसमें जुलुमात है, राद है, बर्क है, ये तीनों क्वालिटीज के साथ है, ये तीनों सिफात है उसके अंदर, कि जब बहुत जोर की बारिश होती है बाजू का तो आप देखते हैं बहुत अंधेरा हो जाता है, फिर आपको जोर से बिजली के कड़ाके की आवाज आती है, गरज की आवाज आती है, फिर आप ये भी देखते हैं कि बिजली की चमक भी आपको बाजू का नजर आती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये सुनते हैं ना कि जो है वो बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं, जोर की बारिश है, तो क्या करते हैं, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपनी कानों के अंदर अपनी उंगलियों को रख लेते हैं। पूरी उंगली को अरबी जबान में अनामिल कहते हैं, ये भी कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अनामिल। तो अभी तो उसको जरूरत नहीं आपको याद करने की, बस वैसे ही, क्योंकि जब मैं आपको कह रही हूँ याद करने की जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है आपको सबको याद हो जाएगा। तो असाबिया जो है इसके मानी क्या है, ये उंगली की पोर। तो अब आप देखें कि कान के अंदर कितनी उंगली जाती है, कितनी ही जाती है, कितनी, इतने को ही असाबिया कहते हैं। तो आप इन्हें ये बात याद रखनी है, पूरी उंगली नहीं, इतनी उंगली जाती है, इसी को अरबी जबान में असाबिया कहते हैं। तो अपनी उंगलियों को अपने कानों में रख लेते हैं, और यानी डर की वजह से, मिनस सवाइकी, बिजली के कड़ाके सुनकर। और क्यों कानों में उंगलियां डालते हैं, हम भी जब बहुत, जैसे कहीं धमाका है, कहीं शोर है, और कहीं बहुत ज्यादा, जैसे ट्रेन का बाज़ू का बहुत शोर होता है, जहाज में आप सफर करते हैं बहुत शोर होता है, तो वो आपको क्या देते हैं, है ना, देते हैं ना ईयरबड, वो देते हैं कि कानों के अंदर इसको आप रख लें, कॉटन सी या कोई भी चीज देते हैं, तो हमें, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते बहुत ज्यादा शोर को, हमें डर लगता है हमें कुछ हो ना जाए, हजार अल मौत, मौत के डर से। मेरे हम अमेरिका में हमसाए में एक बच्ची थी, वो डर गई हुई थी, 7वीं 8वीं में है वो बच्ची, वो ये जब बादल गरजते थे या बारिश, ऐसे मौसम में वो बच्ची का चेहरे का रंग बदल जाता था, उसको बस डर पैदा हो गया तो वो डरती थी। तो यानी जैसे मेरी छोटी बेटी आमना एक दफा उनके घर खेलने गई तो आई, तो डर रही थी कि ये आवाज आ रही है, तो मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे समझाया, तो कहने लगी कि वो बाजी डरती है, तो मुझे भी अब उससे डर लगने लगा है। तो इंसान असरा तो जल्दी कबूल करता है ना, अच्छे हो या बुरे हो। तो डर, मौत के डर से लोग अपनी उंगलियों को अपने कानों में डाल लेते हैं। तो यहां पर ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहते हैं कि अगर गौर किया जाए कि जब जोर से बारिश है तो इससे मुराद इस्लाम है, कि इस्लाम जो है बारिश है, इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। जब बारिश होती है तो भी हमारे लिए रहमत बनता है ना, बारिश रहमत बनती है ना, कि हमारी बीमारियां चली जाती हैं, जमीन जो है वो पैदावार देती है, सोना उगलती है, फल फूल आते हैं, मौसम बदलता है सारा। तो अब अंधेरी घटा, कड़क और चमक, इससे मुराद मुश्किलात और मसाइब है जो इस्लाम पर जब अमल करते हैं ना। मसलन आप इस क्लास में ही आना शुरू आपने किया है, आप देखेंगे यूं लगता है कि हर चीज जो है ना हमारी मुखालिफ हो गई है, हर चीज, यानी अपने ही लगता है। मुखालफत से मुराद ये नहीं कि कोई मारने लगा है, बल्कि ये कि मुश्किल, जैसे ये चीज भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। तो इस्लाम पर अमल करने, आप इस्लाम पर अमल करना क्या है कि आप इल्म सीख रहे हैं, इल्म सीखेंगे तो फिर अमल पर, इल्म पर अमल करेंगे ना। तो चीजें क्या है कि हमें मुश्किल लगती है, किसी को सवारी का मसला है और किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों का मसला है, किसी को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने का मसला है, किसी को ये है कि मैंने इसी वक्त में पैसे कमाने थे, कहीं 10 15 20 डॉलर मिल जाते, अब इसमें वक्त गुजर जाएगा, फिर हमारे कैसे गुजारा होगा, हम क्या करेंगे, है ना। मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल का एक हुजूम है जो हमारे इर्द गिर्द हमें आकर जो है ना घेरे में ले लेता है। तो ये जो इस्लाम पर अमल करने में जो ये मुश्किलात और मसाइब का जो हुजूम है, कुरान इसको कहता है जुलुमात, रात, बर्क और सवाइक। इसको बारिश से अल्लाह ताला ने मिसाल दी है। अब क्या है कि जो तो है अच्छे लोग, वो लोग क्या करते हैं कि वो मसाइब को बर्दाश्त करते हैं, वो रास्ता बनाते हैं, मुश्किलात को दूर करते हैं, वो अपने हदायत का हक का सौदा नहीं करते, वो मेहनत करते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने नफ्स की बागों को ढीला छोड़ देते हैं, जो अपने अपने दीन को अपने नफ्स के सुपुर्द कर देते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को कि सुम बुकमुन उमियुन, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला तो काफिरों का अहाता किए हुए है। इससे मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने उनका जो है वो अहाता किया हुआ है। इसका ये मतलब है कि वो ये समझते हैं कि हम अगर अपनी कानों में उंगलियां डाल लेंगे, अगर हम फलां जगह नहीं जाएंगे, अगर हम दीन इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, तो हम बहुत सेफ साइड पर हैं। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अहाता किया हुआ है, और जिसको अल्लाह पकड़ना चाहे उसको लोगों कोई बचा नहीं सकता, जिसको अल्लाह रखना चाहे उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ये आपको ये बात पता है ना कि आप देखें कि फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, कैसी उसकी दौलत, कैसी उसकी हुकूमत, कैसी उसकी कुर्सी, है ना। जब अल्लाह ने उसको पकड़ना चाहा तो समंदर की लहरों के सुपुर्द कर दिया उसको, उसको और उसकी सारी शानो शौकत को, और कुछ भी उसके काम ना आया, ना उसके लौ लश्कर, ना उसके सिपाही, ना उसके लोग लोग, और वो कहता था कि मैं खुदा हूं। दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें कि सगे भाई, अपने भाई उन्होंने उठाकर अंधे कुएं में डाल दिया। अगर पानी वाले कुएं में डालते तो होता है कोई पानी लेने ही आ जाता है, अंधे कुएं में किसने जाना होता है, लोग जाते ही नहीं, वो तो पानी नहीं देता ना, तो कोई जाएगा कैसे। लेकिन जब अल्लाह ने किसी को बचाना चाहा तो क्या किया, अंधे कुएं से निकालकर मिस्र के तख्त पर उनको पहुंचा दिया, मिस्र के तख्त पर पहुंचा दिया। ये बात हमें बताती है कि जब मौत लिखी है तो वो आकर रहेगी, जो रिज्क और दाना मेरी और आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो मिलकर रहेगा ना, दूसरों के दाने पर, दूसरों के माल पर नजर उठाएं, ना उसको छीनने की कोशिश करें, ना परेशान हो कि मुझे ये हक नहीं देता, मुझे ये नहीं देता, मेरे साथ ये मसाइल है, मेरे साथ वो मसाइल है। अपने मामला अल्लाह के नीली छत वाले के सुपुर्द कर दे, नीली छत वाले के सुपुर्द करके तो देखें कि अल्लाह कैसे आपकी और मेरी जरूरियात को पूरा करता है, और मेरे और आपके दिल में ख्याल आता है और अल्लाह मेरी और आपकी वो चीज जो है ना उसको पूरा कर देता है। और बहुत दफा जिंदगी में ऐसा होता है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं थी और तूने पूरी कर दी, ये मैंने चाहा था, मैंने किसी से कहा ही नहीं और तूने मुझे बिन मांगे दे दी। तो ये ईमान के जाप्ते हैं, ये इश्क वालों की बातें हैं। तो असल बात क्या है कि सच्चा ईमान लाकर तो देखो, राहें ना खोल दूं तो कहना, है ना। तो इसी तरह जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, या मुसलमान भी, बाज औकात जैसे हम लोग डरते हैं आजकल 9/11 के बाद, सब मुसलमान डर रहे हैं। कोई ले ऑफ हुआ हुआ है, किसी को जॉब नहीं मिलती, कोई कहता है तालीम का मसला, मुख्तलिफ इमिग्रेशन, डिफरेंट दिस एंड दैट मसले मसाइल हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत, जो शान और शौकत, जो दौलत, जो जॉब, जो औलाद, या जो कुछ भी मेरी और आपकी किस्मत में लिखा है ना, अल्लाह उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम अल्लाह का इनकार करेंगे, खा दाढ़ी कटवा लें, खा बुरके उतार लें, खा नमाजों को छोड़ लें, खा नामों को बदल लें, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। ये कुफर बिल अमल है कि हम अमल में कुफर कर रहे हैं। जब 9/11 का वाकया हुआ, मैं न्यूयॉर्क में थी, और मैनहट्टन के करीब ही है हमारा इलाका, जो क्वींस का इलाका है, और एक हमारी ही अपनी बिल्डिंग में एक बहुत खूबसूरत ऊंची लंबी औरत, खान वगैरह होगी, पठान, और उसने शलवार कमीज और दुपट्टा बड़ा अच्छा लेती थी, उसने पैंट शर्ट पहनकर बालों को खुला रखकर वो जाने जाने लगी। लोगों ने बहुत कुछ किया, तो मतलब मैं भी अपनी अमवाज को लेकर जाती थी, तो मैं उसे यानी इसी तरह बुरका और स्कार्फ, और मैं नहीं, बहुत से लोग ऐसे ही जाते थे, उसके ऊपर लोगों ने अंडे भी फेंके। आपकी ये जो स्किन है ना, ये चेंज नहीं हो सकती। आपकी स्किन, आपका फेस, आपकी आईज, ये बोलती हैं आप कौन है। तो उस वो फिर परेशान थी कि वो बस गुजरती हुई में से लोगों ने मेरे ऊपर गंदे अंडे फेंके हैं, कोई ऐसी चीज सी लिक्विड फेंक दी है। तो मेरा तो, मैं सोच रही थी इस बात पे कि देखो, जब अल्लाह किसी को बचाना चाहे और जब किसी को जो है वो एक बात दिखाना चाहे, तो असल बात क्या है कि वो जब जो मसाइल और मुश्किलात दीन पर अमल करने के नतीजे में इंसान पर आती हैं, तो लोग कानों में उंगलियां डाल देते हैं, लोग डरने लगते हैं, लोग बहुत से ऐसे गलत काम करते हैं जो ठीक नहीं है। लेकिन याद रखना, वो तुम्हारी जो इकदाम हैं, वो तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकती। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह जो है वो काफरों का अहाता किया हुआ है। यकादुल बर्कु यख्तफु अबसारहुम, करीब है, नजदीक है कि चमक जो है, बर्क, ऐसी बिजली जिसमें चमक है, कि उनकी आंखों की रोशनी को ले जाए। यानी अब मुसीबत और परेशानियों से उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब अंधे ही हो गए, नजर ही नहीं आता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो भी दीन इस्लाम पर अमल के नतीजे में लोगों को मुश्किल लग रही है, उनको ऐसा लगता है कि ये मुसीबतें जो हैं उनकी रोशनी को ले जाएंगी, उनको कुछ हो जाएगा दीन इस्लाम पर अमल करने की वजह से। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की है, कहा कुल्लमा अदा लहुम मशौफी, जब रोशनी होती है, अदा जो यानी रोशनी होती है, नूर सा आता है, तो क्या चलने लगते हैं इसमें। जब दीन इस्लाम पर अमल की वजह से फायदा होता है ना, माल गनीमत मिल रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, कोई जॉब मिल रही है, कोई शाबाश मिल रही है, तो कहते हैं कि हाँ हाँ हम मुसलमान हैं। और वैजा अजलमा, जब अंधेरा हो जाता है, अलैहिम कामू, जब उनके ऊपर अंधेरा आता है, यानी मुश्किल तकलीफ परेशानी आती है, तो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं इस दीन इस्लाम पर हम अमल नहीं कर सकते, रुक गए, वहीं पे रुक गए। अब्सारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो क्या करता, ले जाता इनके सुनने की जो सलाहियत है और इनके देखने की सलाहियत को भी, अगर अल्लाह चाहता। यानी ये जो आम दुनिया में चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इनको गुंगा ही कर देता, मैं उनको बहरा ही कर देता, मैं इनकी ये सलाहियतें इनसे बिल्कुल ही छीन ही लेता। हमारी न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट में मेरी एक तालबिल थी, अल्लाह की तौफीक से मैट्रिक ऐसे उन्होंने किया हुआ था, और जब वो मेरी क्लास में आई तो वो बोल नहीं सकती थी और वो सुन भी नहीं सकती थी, तो वो लिप्स रीडिंग करती थी, उनको उनकी जगह मुकर्रर थी कि सबसे पहले वो आके बैठेंगी। तो मैंने कहा, क्या रुकैया उनका नाम था, मैंने कहा आपको कैसे, कैसा हुआ ये, क्यों बदायशी? तो कहने लगी कि नहीं, मैं ठीक थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि मेरी ये जो सलाहियत है ना, मुझसे छिन गई। और अब जो है वो क्या है कि पहले की निस्बत थोड़ा थोड़ा वो बोलने लगे हैं, सुनने में अभी भी उनको मुश्किल है। जैसे हम जब फोन करते हैं तो उनके हस्बैंड उठाते थे, या उनके हस्बैंड हमें मैसेज देते थे, और वो मतलब पीछे से बताते थे कि ये ऐसे ऐसे बात है ना, और लिखाई ऐसी जैसे कि मोती। पूरी क्लास उनके नोट जो थी ना, यानी अपने साथ साथ उसके नोट जो थी वो लेती थी। तो लेकिन अब जो है उनके अंदर जो है ये बोलने की कैफियत काफी हद तक आ गई है। बहुत मतलब मुश्किल होती है उनको, लेकिन कहती हैं कि गला मेरा हलक बहुत खुश्क होने लगता है, और लेकिन ये कि सुनना अभी भी उनके लिए मुश्किल है, बहुत सुन नहीं पाती, बहुत यानी जब भी कोई बोलता है उसको लिप्स रीडिंग वो करती हैं, लायक बहुत है। तो मुसीबतें और परेशानियां क्या करती हैं कि इंसान की बाज़ुकात उसकी जो सलाहियतें होती है ना, वो लगता है जहन काम नहीं अब कर रहा, एकदम कुछ हो जाता है इंसान को, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो ऐसा कर देता। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। यहां पर अल्लाह ताला ने अपनी कदीर की सिफत को मुतारिफ करवाया है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, अगर मैं चाहता तो तुम्हें बिल्कुल ही खत्म करके रख देता, तुम्हें जमीन में जीने ही ना देता, आसमान से कोई तूफान भेज दे, आंधी कोई आ जाती, जमीन से कोई तूफान आ जाता, तुम खत्म हो जाते। और तुम जो है ये समझते हो कि दीन इस्लाम पर अमल करने के नतीजे में हमें ये मुश्किलात है, तो हम इसलिए दीन इस्लाम पर अमल नहीं करते। तो यहाँ पे आयत नंबर 17, 18, 19 और 20 ये चार आयतों में, दो मिसालों में अल्लाह ताला ने इनकार करने वालों को बताया है कि वो इनकार ना करें, खा वो काफिर हो या मुनाफिक, वो सहूलतों की वजह से इस्लाम का नाम ना लें। बहुत मशहूर पंजाबी का वो शेर है ना कि पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं हो आवना, हूं जीते जान दी बाजी लावनी पवेगी। यानी हम कहते हैं ना, आप देखिए अब स्नो का मौसम है, हम बहुत स्ट्रांगली अपने स्टेप्स को रखते हैं ना, है ना, कि वरना हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इस्लाम पर अमल करने के लिए, बस जैसे एक कदम अंदर है और एक बाहर है, फायदा नजर आया तो दोनों कदम अंदर कर लेंगे, नुकसान लग रहा है इस्लाम पर अमल करने में तो दोनों कदम बाहर। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मत समझो कि तुम अगर इस्लाम पर अमल करोगे तो मुसीबतें आएंगी, मैं वैसे भी मुसीबतें तुम पर नाजिल कर सकता हूँ। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अब मोमिनीन काफिर मुनाफिक इनसे बात करने के बाद, इनको खास तौर पर दावत देने के बाद, अब अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को मुखातिब करते हैं। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नासु बुदू, ए इंसानियत ए लोगो क्या करो, ओ बुदू बंदगी करो, किसकी, रब्बकुम अपने रब की। यानी अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने रब की बजाय अल्लाह भी ला सकते थे, है ना, खालिक का सिफत आ सकती थी, अल्लाह ताला की कोई भी दूसरी क्वालिटी जो थी यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी किसी क्वालिटी का जिक्र करने की बजाय खास तौर पर जो है ना रब का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। और हम सब ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि रब जो है वो कौन है, वो जो एक हकीर से पानी के नुतफे से इंसान को एक जीती जागती शख्सियत बनाकर खड़ा कर देता है ना। तो कहा कि अपने रब की इबादत करो, और आप अब जो है इसके मानी जो है पहले ही पढ़ चुकी हैं कि अब के अंदर तीन मानी जो है वो पाए जाते हैं, अब्द इबादत, और ये तीन मानी जो हैं इससे मुराद क्या है कि पहली चीज क्या है कि सिर्फ वर्शिप ही नहीं करनी, यानी वर्शिप करना, फिर दूसरी चीज क्या है कि फॉलो करना, ओबीडियंस ही अख्तियार करना, और तीसरी चीज क्या है कि फिर सर्वेंट बन जाना। तो पूजा परस्तिश अतात, और तीसरी चीज है बंदगी और गुलामी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पूजा पाठ भी अल्लाह की करनी है, अतात भी अल्लाह की करनी है, और उसके साथ ऐसे अतात करना है कि फिर उसी का होकर रह जाना है, उसके दर को छोड़ना नहीं है, आसानियां हो मुश्किल हो उसके दर से निकलना नहीं है। सो बुदू रब्बकुम, इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक वाकया बहुत अच्छा लगता है। एक दफा वो एक नौकर खरीदने के लिए बाजार गए, और वहां पे आपको पता ही है कि अरबों में ये रिवाज था कि बिकते थे, लोग खरीदते थे और काम लेते थे। तो उसे पूछा कि क्या लोगे, उसने कहा जो चाहे दे दे। कहा कि तुम्हें किस नाम से पुकारें, कहा कि जो भी नाम। कहा कि पहनोगे क्या, कहा कि जो कपड़े। खाओगे क्या, कहा कि जो भी मुझे मिल जाए। तो फिर वो आदमी कहने लगा इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह को कि एक सर्वेंट की, एक गुलाम की औकात ही क्या है कि वो कहे कि मुझे क्या मिले, मुझे पहनने को, खाने को, ओढ़ने को, रहने को, उसकी क्या डिमांड है। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुनकर रोने लगे, कहने लगे अफसोस इब्राहिम बिन अदम, तुझे अपने रब की गुलामी ना आई। तो तुझे अपने रब की बंदगी ना आई, जैसी कि इस गुलाम को आज पता है कि मेरी हैसियत क्या है, और अफसोस कि तुझे एहसास ही नहीं है कि रब के मुकाबले में तेरी हैसियत क्या है। मैं और आप तो मैं और मैं कहते जो है वो थकते नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि कुत्ता घर में मौजूद है इस वजह से चोरी नहीं हुई, ये भी शिर्क है। डॉग जो है वो मुझे और आपको चोरी से नहीं बचाता, अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह की तौफीक से मैं और आप चोरी से बच गए। मैं और आप कहते हैं कि शुक्र है कि मैंने आज बहुत स्नो में, मैं पुरानी ही चलाने वाली हूं ना गाड़ी, और स्नो के टायर हैं, स्नो टायर है ना हमारे पास, तो गाड़ी जो है ना वो क्या नहीं करती, स्पिट नहीं करती, तो इस वजह से मेरी, मैं जो है ना एक्सीडेंट से बच गई। ये भी शिर्क है। कहने वाले कहते हैं ये भी शिर्क है। शिर्क कैसे दाखिल होता है? जैसे स्याह पत्थर पर स्याह रात में स्याह चूंटी चढ़ जाए तो पता भी नहीं चलता, इसी को रिया कहते हैं ना, दिखावा कहते हैं। तो मेरी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। वो हमारी एक दोस्त है, वो बिरयानी और जर्दा बहुत अच्छा बनाती है, तो वो जेबरा चावल बड़े अच्छे हैं, चावल जेबरा के हों या वो जो है वो कोई भी चावल हो, अल्लाह की तौफीक है कि आपसे बिरयानी अच्छी पकवा लेती है। वो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि पहले कभी मैं बातें किया करती थी, अब तो मैं हर वक्त ये कहती हूँ कि अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह मुझसे ये काम इतना अच्छा करा लेता है। एक हमारी न्यूयॉर्क में मेरी एक स्टूडेंट थी, बड़ी उम्र की थी, एक दिन राइड दे रही थी तो गाड़ी में बात करने लगी कि इतने साल हो गए मुझे ड्राइविंग करते, कभी मुझे ना टिकट नहीं मिला, छोड़कर मुझे गई, उसी दिन उनको टिकट मिल गया। पता नहीं कितने साल हो गए थे, तो पता नहीं उन्होंने क्या गलती की, कहने लगी कि आज मुझे टिकट मिल गया, तो पता नहीं मेरा बोल मेरे सामने आ गया। तो असल बात क्या है कि कभी अल्लाह यूं सिखा देते हैं टिकट देके, और कभी अल्लाह ताला दुनिया में मोहलत देते हैं, उसकी रस्सी को दराज करते हैं, और हम ये समझते हैं कि मैं, तो लोगों असल बात क्या है कि मैं और आप कुछ नहीं है। असल बात क्या है कि बुदू रब्बकुम, तुम अपने रब की बंदगी करो। बंदगी में नमाज भी, रोजा भी, हज भी, जकात भी, सारी चीजें आ जाती हैं, और इसके साथ साथ बंदगी में क्या है कि गुलामी, सारी जिंदगी की गुलामी, सिर्फ बुढ़ापे की गुलामी नहीं, जब मुश्किल हो तो जाए नमाज से बैठ जाए, ये गुलामी नहीं, अच्छे दिनों में भी गुलामी और बुरे दिनों, जब भी जो भी अल्लाह के दर के हम सवाली बन जाएं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरे दर पर क्यों ना बैठो, तुम मेरी बंदगी क्यों ना करो। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, पैदा किया। मैंने आपके लिए एक मूवी जो है उसका इंतजाम किया है कि जो क्रिएशन, इंसान की क्रिएशन के जो डिफरेंट स्टेप्स है ना, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो इतना वाकई इंसान दंग रह जाता है कि कैसे माँ की अंधेर नगरी के अंदर, जहां बिल्कुल डार्कनेस है, जहां हवा नहीं जाती, कुछ नहीं है, बंद है, और वहां पे एक हकीर सा पानी का नुतफा, वो कैसे परवरिश पाकर जीता जागता इंसान बनकर जो है ना वो खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया, खलका, जिसने तुम्हें पैदा किया, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुमसे पहलों को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम, हो सकता है कि तुम इस तरह गुनाहों को छोड़ दो, हो सकता है कि इस तरह तुम जो है वो मुत्तकी बन जाओ, तुम अच्छे इंसान बन जाओ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है तमाम इंसानों को मुखातिब करके, काफिर हैं, मुनाफिक हैं या मोमिन हैं, उन सबको मुखातिब करके इकट्ठा, या योन्नास, तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया है, तौहीद की दावत दी है, कलमाए तौहीद की दावत दी है। तो क्या दावत दी? कि काफिर कुफ्र छोड़कर मुसलमान हो जाएं, मुनाफिक मुनाफिक दो रंगी और मुनाफकत और कंट्राडिक्शन और डबल फेस छोड़कर इखलास इख्तियार करें, और मोमिन क्या करें कि उनकी जिंदगी के अंदर अमल में जो भी कमी है, कहीं वो शिर्क तो नहीं कर रहे, कहीं उनके अंदर निफाक तो नहीं है, कहीं कुफर तो नहीं है, और ये जो कुफर की हमने किस्में देखी ये तो इनके अंदर नहीं है, तो वो इन सारी चीजों को जो है मोमिन मुसलमान जो है वो छोड़कर क्या करें, अतात पर और इबादत पर हमेशा के लिए कायम करें, कायम हो जाए, और उसी में मजीद आगे उसमें तरक्की करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें भी पैदा किया, हमसे पहलों को भी पैदा किया। और यहाँ पे एक खास बात है जो बहुत अहम है, और वो क्या है कि जब हम बंदगी करेंगे, जब हम इबादत करेंगे, तो जरूरी नहीं कि फिर हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत मेरे और आपके अमाल का बदला नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक से है, जिसको चाहे मिल जाए, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डरते रहते थे। तो कभी भी अपने अमलों को काफी ना समझें कि इससे मुझे और आपको जन्नत मिल जाएगी। अमल करने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तुम मुझसे राजी हो जा, तुम मुझसे खुश हो जा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। यानी कुछ जो भी अच्छे काम करते हो ये ना कहो कि मुझे ये मिलना मिलेगा या ये मिलेगा, बल्कि ये कि सब कुछ छोड़ दे बस अल्लाह की रजा के लिए। लिवजहिल्लाह वमा अजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है। बाकी फिर अल्लाह सब कुछ दे दे, दुनिया में भी दे दे और आखिरत में भी, ये अल्लाह की देन है जिसको चाहे दे। ठीक है, तो लअल्लकुम तत्तकून, फिर हो सकता है कि तुम मुत्तकी बन जाओ जब इबादत करोगे, जरूरी नहीं कि तुम बन जाओ। ठीक है, और फिर इससे एक बात और हमें क्या पता चलती है कि यानी यहां पे हो सकता कहा है, शायद डेफिनेट नहीं है। इसका एक वजह क्या है कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि कोई लोग बहुत नेक और मुत्तकी और अच्छे इंसान होते हैं लेकिन बाद में वो गलत राहों पे चल पड़ते हैं। बाद लोग बहुत गलत होते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे देता है, बहुत नेक लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो कभी भी अपनी नेकियों पर मान न करना, कभी भी किसी को, बाज औकात बाज लोग कहते हैं वो तो पक्का काफिर है, वो तो है ही मुनाफिक, वो तो है ही फला। हम लोगों को टाइटल और जो है ना बहुत बड़े बड़ी बातें कह देते हैं, ये मेरा और आपका मकाम नहीं है। और कभी भी बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल कटे हुए हैं, उन्होंने बुरका नहीं पहना या जिलबाब नहीं पहना या स्टाफ नहीं लिया, कभी उनको बुरा ना जाने। अल्लाह जाने उनके दिल में ही पहाड़ों से ज्यादा मजबूत ईमान हो, अल्लाह जाने उनके अमल कैसे हो, पता नहीं अल्लाह की नजरों में उनका क्या मकाम हो और कब वो कहां से कहां चले जाए। मोहब्बत करें, शफकत करें, और हमेशा मैं और आप यही सोचते रहें कि हो सकता है वो मुझसे बेहतरी हो सकता है मुझसे बेहतर हो। लअल्लकुम तत्तकून, तो तत्तकून के अंदर तीन चार चीजें जरूरी हैं। पहली चीज जो है वो डरना, गुनाहों से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह की नाफरमानी से डरना। दूसरी चीज है बचना, डरते हम सभी हैं, बचते कम लोग हैं। जैसे स्नो आ रही है सब डर रहे हैं, अब उसके बचने के लिए कुछ लोग तदबीर करेंगे, कोई स्नो के जूते लेंगे, कोई जो है वो स्नो के गाड़ी के अंदर व्हील लगाएंगे, और कोई जो है वो नमक डालते हैं, मुख्तलिफ उसकी तदाबीर करते हैं। यानी डरते हम, हमें हम कहते हैं अल्लाह से बड़ा डर लगता है, साथ साथ गीबत करते जाते हैं, अल्लाह से बड़ा डर लगता है, बड़ा तौबा मेरी तौबा, और नमाजें कजा करते चले जाते हैं, या अल्लाह तू मुझे माफ कर देना, और साथ बैठे मूवी देख रहे हैं, रात गुजर रही है, रात जाया कर दी हमने, है ना। तो डरते बहुत से लोग हैं, यानी मुंह से डरने का दावा करते हैं, दावा करते हैं लेकिन बचते नहीं है। तो तकवा के अंदर नंबर वन डरना प्लस बचना, नंबर तीन फिर गुड डीड अमल आता है। जब तक यानी डरना प्लस बचना इंसान को अमल तक ना पहुंचा दे तब तक वो मुत्तकी नहीं है, तब तक वो मुत्तकी नहीं है। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में अपना तारुफ जो करवा रहे हैं वो बता रहे हैं, पीछे पहले कहा ना रब, अब रब के लिए यहाँ पे जमीर आई है अल्लाजी। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ना कि असलम, फिर आप कहते हैं ही, खालिदा फिर आप कहते हैं शी, ही शी का आप इस्तेमाल करते हैं ना, अरबी जबान में भी इसी तरह इसका इस्तेमाल होता है। एक के लिए अल्लाजी है और ये मुजक्कर के लिए है, और अगर कोई चीज मुअन्नस हो तो अल्लाती है। ठीक है, तो अल्लाजी वो जात, वो जो, जिसने, मुख्तलिफ तर्जमा मौके की मुनासबत से करते हैं। फिर हम अल्लाजी जाला लकुमुल अर्दा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को, क्या बनाया, फिराशन, फर्श बनाया। इसके लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने जमीन को ना तो पानी की तरह नरम बनाया कि हम इस पर चल ना सके। अगर पानी होता जमीन तो हम करार कैसे पाते, हम इस पर चलते कैसे, हमारे घर कैसे बनते, हम इस पर इसको आबाद कैसे करते और हमारी जिंदगी कैसे बरकरार रहती। और ना ही अल्लाह ताला ने इसको लोहे और पत्थर की तरह सख्त बनाया। अगर ये लोहे और पत्थर की तरह जमीन सख्त होती तो हम अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल ना कर सकते। तो लोगों, अल्लाह ताला ने जमीन को नरमी और सख्ती के दरमियान में पैदा किया। यहां क्या कहा, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, कि उसने जमीन को तुम्हारे लिए जो है वो एक फर्श बना दिया है, तुम्हारे लिए एक बिछोना बना दिया है। जैसे एक बिछोना जो है वो बिछा दिया जाता है ना। अब आप देखें कि सूरत नाजियात में भी अल्लाह ताला कहते हैं वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, और इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया। तो कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला अपनी कारीगरी की, अपनी सन्नाई की, अपनी बनावट की, अपनी तखलीक की मिसालें देते हैं। और क्यों देते हैं? ताकि मैं और आप अल्लाह को पहचाने, अल्लाह को जाने, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह की इबादत करें, उसकी बातें किया करें, और उससे मुलाकात का इंतजार करें, और उससे मुलाकात की तैयारी करें, तैयारी करें, और इस बात से डरे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, के लोग दोनों जहानों के रब के सामने जो है ना वो खड़े होंगे। कहा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, कि उस अल्लाह की लोगों तुम इबादत क्यों ना करो जिसने जमीन को फर्श बनाकर तुम्हारे लिए बिछा दिया। हमारी वालदा हमारे लिए बिस्तर बिछाती है ना? आपकी वालदा ने आपके लिए बिस्तर बिछाया, आज आप मदरसे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए बिछाते हैं, तो बच्चे मदरसे माओ से कैसा प्यार करते हैं ना, है ना, कि ये मेरी माँ है, और माँ तो माँ है, ठंडी छांव है, माँ तो ठंडक है, माँ तो सुकून है, माँ यानी क्या क्या हम माँ के लिए नहीं सोचते ना। बहार है, फूलों की खुशबू है, शबनम जैसी है, पानी की रिमझिम जैसी है, सितारों की जगमगाहट जैसी है, और पता नहीं क्या क्या। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ तुमसे जितना प्यार करती है ना, अल्लाह 70 माओं से बढ़कर तुमसे प्यार करता है। 70 मदर्स की लव को जमा कर लो, अल्लाह उससे भी बढ़कर तुमसे प्यार करता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया, वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया। अब आप देखें कि आसमान जो है अल्लाह ताला ने मेरे और आपके ऊपर जो है वो कायम कर दिया, और ये आसमान जिस जो नीली नीली एक छतरी की तरह एक नीला गुंबद है, कहीं भी इसकी तरफ हम नजर उठाकर देखें, हमें कहीं आसमान पर जब हम नजर उठाकर देखते हैं, कहीं हमें कोई कमी बेशी जो है ना नजर नहीं आती। अल्लाह ताला हमसे कुरान मजीद में ये सवाल भी पूछते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खलक़िर रहमान मिन तफावुत फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मरजिल बसर करतैनि यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासियन वहुवा हसीर, कि तुम बार बार नजर दौड़ाओगे ना, कहीं तुम्हें कोई सुराख नहीं नजर आएगा, होल नहीं नजर आएगा, कोई तुम्हें कोई रखना नजर नहीं आएगा। कहा फिर नजर दौड़ाओ, तुम्हारी नजर थक कर ना मुराद होकर वापस जो है वो आ जाएगी। फिर आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मतलब फिर एक बात पूछते हैं कि लोगों बताओ मुझे कि तुम्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है, कुरान मजीद में पूछते हैं ये बात कि तुम्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है या कि आसमान को बनाना। सूरत नाजियात में कहते हैं अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बनाहा, क्या तुम्हारी तखलीक ज्यादा मुश्किल थी या कि आसमान का बनाना। तो वो रब उसने क्या किया, वस्समा बिना, कि हमारे लिए आसमान को आसमान की छत बनाई, और फिर क्या किया, वअंजला मिनस समाई मा, और आसमान से पानी उतारा, बारिश। और पानी जो है ये क्या है, बारिश जो है ये क्या है कि बारिश से, बारिश जब आती है तो फल और फूल आते हैं, बहार आती है, खुशबुएं बिखर जाती हैं, सेहत होती है, जवानी होती है, और चेहरों पे रौनक होती है, फलों में कसरत होती है, फलों में लज्जत होती है, जो दूध देने वाले जानवर है ना उनके थनों में दूध आ जाता है, क्योंकि सब्जा होता है, पानी से सब्जा होता है, और जब सब्जा जानवर खाते हैं तो थन उनके दूध से भर जाते हैं। तो हर तरफ फिर अल्लाह की जलवागरियां, अल्लाह की सनाइयां, अल्लाह अल्लाह की कायनात में जो कारीगरियां हैं वो हम सबको नजर आती हैं। फिर क्या हुआ, फाखरजा बिही मिनस समावाति रिज़्क़ल लकुम, फिर उसने आसमान से ये बारिश हुई, फिर उसने क्या किया कि तुम्हारे लिए रिज्क निकाला, तुम्हारे लिए फल निकाले, फूल निकाले, तुम्हारे लिए तमाम तरह की जो नेमतें थी उसको तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब मुझे बताएं, अब जरा सोचे तो सही, अब लम्हा भर के लिए गौर तो करें, क्या मुझे और आपको ये जेब देता है, क्या मेरी और आपकी फिर ये जुर्रत हो सकती है, क्या मैं और आप ये सोच सकते हैं कि उस रब के साथ हम शिर्क करें, उस रब को छोड़कर दूसरों के दर पर जाएं, फिर उस रब को एक इलाह न कहें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फिर उसका हम नारा ना लगाएं, फिर तौहीद ला तौहीद का जो नगमा है फिर उसको हम ना गाएं, है ना। कहा फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून, फिर ना बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। अंदादन हमने पढ़ा था ना, निद दूसरों को पुकारना, दूसरों को बुलाना, दूसरों को आवाज देना। फिर ऐसा कैसे होता है कि तुम ये कहते हो कि ये, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि पीर बख्श, हम नाम रखते हैं बेटे का पीर बख्श, ये शिर्क है। पीर नहीं बेटा देता, अल्लाह बेटा देता है, है ना। हम कहते हैं पीर बख्श, तो हम कहते हैं गौसे आजम। गौस कौन होता है? जो किसी की फरियाद को सुनता है। आजम सबसे बड़ा फरियादों को सुनने वाला वो कौन है? वो अल्लाह की जात है। हम कहते हैं अली मुश्किल कुशा। अली रजी अल्लाह अन्हो बहुत बहादुर थे, खुलफाए राशिदीन में से हैं वो। उनके बारे में प्यारे सुन ने फरमाया वो इल्म का दरवाजा है, और खैबर को में फतह जो थी अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को ये तौफीक दी कि उन्होंने वो दर्रा के ऊपर जो दरवाजा था उसको खेड़ा और अलम वगैरह सब कुछ। इसके बावजूद हम यही कहेंगे अल्लाह मुश्किल कुशा, हम किसी इंसान से नहीं कह सकते, है ना। तो जूते का तस्मा भी टूटे तो हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के दिल के अंदर जो है वो तौहीद होगी, ला इला इल्ला होगा, तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। तो यहाँ पे शिर्क से मना किया गया है, शिर्क की जड़ों को काट दिया गया है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, फिर तुम अल्लाह के साथ दूसरों को जो है वो मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। वह अन तुम तालमून, और हालांकि तुम जो है वो जानते भी हो। और जैसे मैं और आप भी सोचते हैं कि कैसे पता चले कि वाकई अल्लाह है, इसके लिए चंद एक मिसालें हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं। वैसे तो इंसान का जीता जागता वजूद इस बात पर विटनेस है कि ये मैं और आप खुद से पैदा नहीं हो सकते थे, अल्लाह ने पैदा किया। ये कायनात विटनेस है। यानी आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने अनफुसी दलील दी, नफ से दलील दी। आयत नंबर 22 में 22 में अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल दलील दी, जिसमें जमीन, आसमान, बारिश, फल। तो जब ये सब चीजें अल्लाह से लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह को फिर पहचानना चाहिए, है ना। तो हमारा क्या हाल है कि जो मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जो मैं सर्ब सजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो आप देखें, किसी बद्दू से पूछा गया कि अल्लाह तबारक ताला की मौजूदगी की दलील क्या है। उसने कहा जब ऊंट यानी रास्ते में सफर होता है ना, तो मेंगनी कोई देखते हैं ना, ऊंट की जो मेंगनी है, जो उसका वेस्टेज है जो भी, वो देखते हैं तो लगता है कि यहां से कोई ऊंट गया है। ऊंट नजर नहीं आता तो उसकी मेंगनी से पता चलता है कि ऊंट है। और कोई शख्स नजर नहीं आता, उसके फुट स्टेप जो होते हैं, उसके साइन से हम कहते हैं कोई इंसान यहां से गुजर कर जो है वो गया है। तो ये बुर्जों वाला आसमान, ये रास्तों वाली जमीन, ये मौजे मारने वाला समंदर, ये इस बात की दलालत करते हैं कि ऊपर कोई अल्लाह ताला जैसी जात मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद की दलील क्या है कि अल्लाह है। आपने फरमाया मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का होना, जबानों का मुख्तलिफ होना, आवाजों का डिफरेंट होना। एक माँ के बच्चे होते हैं, आवाज मुख्तलिफ होती है, आवाजों का मुख्तलिफ होना। फिर इसके बाद फरमाया नगमों का अलग होना साबित करता है कि अल्लाह है। इसी तरह से जो है, किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि कैसे पता चले कि अल्लाह है, आप इसकी कोई दलील दें। तो आपने बड़ी खूबसूरत दलील दी कि तूत, तूत के पत्ते एक ही हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शतूत को। रेसबेरी। अच्छा बहरहाल कोई ना कोई बैरी तो होगी, तो आप इसका पता कर लीजिएगा कि ये जो तूत है इसके पत्ते एक ही हैं, एक ही जायका के होते हैं, लेकिन जब इसको कीड़े खाते हैं और जब शहद की मक्खी खाती है और गाय खाती हैं तो बकरियां खाती हैं, सब इनको ये खाते हैं और चबाते हैं, लेकिन रेशम का जब कीड़ा खाता है तो रेशम पैदा करता है, शहद की मक्खी खाती है तो शहद पैदा होता है, हिरण जब खाता है तो उसमें मुश्क बनता है, और गाय और बकरियां जब खाती हैं तो मेंगनियां देती हैं। तो क्या ये समर की दलील नहीं कि एक पत्ते में डिफरेंट क्वालिटीज पैदा करने वाला कोई है, और वो कौन है? वो अल्लाह ताला है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि अल्लाह है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी कि कोई एक मजबूत सा कला है, और क्या है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई उसका रास्ता नहीं है, कोई उसके अंदर होल नहीं है, सुराख नहीं है, बाहर से वो चांदी की तरह चमक रहा है, अंदर से वो सोने की तरह चमक रहा है, और ऊपर नीचे चारों तरफ से बंद है, हवा अंदर नहीं जाती, एक दीवार गिरती है उसकी और एक जानदार आंखों वाला कानों वाला खूबसूरत प्यारी बोली वाला फिर निकल आता है। बताओ कि एक बंद कमरे के अंदर, एक मकान के अंदर पैदा करने वाला कौन है? ये अल्लाह के सिवा कौन हो सकता है? और उन्होंने ये कहा था, मिसाल दी थी अंडे की, और उसमें से चूजा निकलता है बंद हर तरफ से। एक मिसाल पर मैं आज की बात को खत्म करती हूँ। इसी तरह कोई अल्लाह का मुनकिर था और वो किसी बुजुर्ग के पास गया और कहा कि कैसे मान जाऊं कि अल्लाह है, अगर तुम मेरी दो तीन सवालों का जवाब दे दो मैं तुम पर इस्लाम ले आऊं, इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। कहा उसने कि पहली बात तो ये बात बताओ कि यानी अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता, दूसरी बात ये कि अल्लाह अगर मैं अच्छा मुसलमान नहीं बनता तो अल्लाह ही नहीं चाहता, क्योंकि कोई चीज भी अल्लाह की कुदरत के बगैर जो है वो नहीं होती। तीसरी बात क्या थी कि इंसान जो है, जब वो इंसान जो है वो तो मिट्टी से पैदा हुआ, लेकिन जैसे शैतान आग से पैदा किया गया तो जहन्नुम में जाएगा तो आग उस पर असर कैसे करेगी, आग तो आग को कैसे जलाएगी? तो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया, उन्होंने उसकी बातों को बड़ी गौर से सुना, फिर एक मिट्टी का ढेला लेके ना उसको जोर से मारा, वो शख्स चीखने लगा और उसने जाके उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि मैंने इससे सवाल पूछा इसने मुझे मार दिया। तो इन बुजुर्ग ने जाके जवाब दिया कि मैं ये मेरे एक पत्थर जो मैंने पत्थर नहीं मिट्टी का जो ढेला माना ना मारा, इसमें तीनों बातों का जवाब है। उसने कहा वो कैसे? कहा कि पहली बात तो ये कि इसकी किस्मत नहीं था किसको ये मिट्टी का ढेला लगना है और ये रोता क्यों है, इसने खुद ही कहा कि मेरी किस्मत नहीं है कि मैं नेक बनूं, है ना, तो ये तो जो किस्मत में है फिर इसको लग गया। दूसरी बात कही कि इसने कहा था कि जो है वो आग आग पर असर कैसे करेगी, ये तो मिट्टी से बना और मैंने मिट्टी मारी है, ये रोता क्यों है कि मुझे दर्द हो रहा है, मिट्टी मिट्टी पर मिट्टी मारी है ना तब रोता क्यों है ये? उसने कहा कि हाँ बड़ा दर्द होता है। इसने कहा कि दर्द दिखाएं, बुजुर्ग ने कहा दर्द दिखा, उसने कहा दर्द दिखा नहीं सकता, महसूस होता है। कहा कि अल्लाह महसूस किया जाता है वो नजर नहीं आता, अल्लाह महसूस किया जाता है वो अपनी कुदरतों से पहचाना जाता है वो नजर नहीं आता, तो जन्नत में उसका नजारा जो है वो होगा। तो असल बात क्या है जो मेरे और आपके लिए अमल का असूल है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादं व अंतुम तअलमून। अल्लाह का इतना खूबसूरत तारुफ लेने के बाद फिर मुझे और आपको भी शिर्क नहीं करना चाहिए, और अपना जो सर है ना अल्लाह के दर पर डाल देना चाहिए। और कैसे डालें? मेरी नजर में वही सर है सर आमिर, जिसे जमाना काट तो डाले मगर झुका ना सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।